الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ونجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو یہ سورہ یوسف کی آخری دو آیات ہیں جن کی ہم ترجمہ و خلاصہ تفسیر پڑھ کے مکمل کر چکے تھے، اور آخری کلاس میں ہم معارف و مسائل پڑھ رہے تھے اور پیج نمبر 162 کے اوپر پہنچ چکے تھے. تو آخری دو صفحات بھی رہ گئے ہیں اس کے، تو ہم یہیں سے پھر آج پڑھنا شروع کرتے ہیں. جو غالباً پیج شیئر بھی کیا ہوا ہے ایڈمن صاحب نے اسکرین کے اوپر، تو اس میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے تحت یہ جو پہلی آیت ہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا. قد کذبوا، جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی ان کے پاس. فنجیا من نشا، پھر ہم نے بچا لیا، ہم نے نجات دے دی جس کو ہم نے چاہا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں پھرتا ہمارا عذاب مجرموں کی قوم سے. تو اس میں جو فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ کذبو مشہور قراءت کے مطابق پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ مشہور قراءت یعنی قرآن جو ہے وہ ایک سے زائد قراءتوں میں نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ اور قراءتیں جو ہیں کیا کہ مختلف ڈائلیکٹس کے اندر، ڈائلیکٹس یعنی لہجے کہتے ہیں جس کو، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک ہی زبان بولنے کے مختلف لہجے ہوتے ہیں. اردو زبان جو ہے وہ اگر UP کے رہنے والے ہوں تو وہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ لہجے میں بول رہے ہوں گے، دہلی کے رہنے والے دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، ان کے مختلف مختلف لہجے ہوتے ہیں. بہار کے رہنے والوں کا لہجہ بہت مختلف ہوتا ہے، حیدرآباد کے رہنے والے اردو زبان ہی بول رہے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ مختلف جو ہوتا ہے ان کا لہجہ ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی علاقوں کے حساب سے لہجے مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن صرف لہجے مختلف نہیں ہوتے بلکہ کبھی کبھی جو ہوتے ہیں الفاظ کا استعمال بھی مختلف ہو جاتا ہے، الفاظ کا استعمال بھی مختلف ہو جاتا ہے. جیسے کہ اردو زبان کی مثال دیتے ہوئے ہی کہ لفظ ہم بچپن سے یہی پڑھتے رہے ہیں کہ ڈھول، لفظ ڈھول جو ہے نا وہ کوئی اس کو مذکر بولتا ہے اور کوئی اس کو مؤنث بولتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ڈھول کا لفظ مذکر بولا جائے تو بھائی ڈفرینٹ الفاظ استعمال کیے جائیں گے نا، ایک دم صیغہ ہی بدل گیا نا. اگر مؤنث بولا جائے تو صیغہ ہی بدل گیا، مؤنث کا ٹینس جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ لفظ ہوتا ہے، تو الفاظ کا بھی ڈفرینس ہو جاتا ہے. لہجوں کے فرق میں الفاظ کا بھی فرق ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید جو ہے وہ کم از کم بلکہ جو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ہی لکھا ہے معارف القرآن ہی کے مقدمے کے اندر، 20 قراءتوں میں نازل، 20 ڈفرنٹ قراءتیں، اور ان 20 میں سے جو ہے وہ 10 قراءتیں جو ہیں وہ تو زمانے کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً جیسے نہ ہونے کے برابر اب ان کا ایگزسٹنس ہے، لیکن 10 قراءتیں ابھی بھی محفوظ ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ قراء حضرات جو ہیں وہ باقاعدہ اسناد حاصل کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کرام سے پڑھتے ہیں اور ان کو آگے لے کر کے آگے سکھاتے ہیں. ان 10 میں سے بھی جو ہے وہ 7 سب سے زیادہ مشہور ہیں. اسی وجہ سے جو قاری حضرات یہ مختلف قراءتوں کا علم حاصل کرتے ہیں ان کو سبا قراءت کا قاری کہتے ہیں. سبا، سبا مین 7، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے نا الفاظ کا بھی تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے ان قراءتوں میں، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے دن سے، ये ऐसा नहीं है कि लफ्ज के जमाने के साथ जो है वो तब्दीलियां आ गई, नहीं, जमाने के साथ कोई तब्दीली नहीं आई। ये जो कुरान की हिफाजत का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि एक लफ्ज भी उसमें चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे ये नाजिल हुआ था वैसे ही आज मौजूद है। और कैसे नाजिल हुआ था? एक क़िरात में नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि मुख्तलिफ क़िरातों में नाजिल हुआ था, और वो क़िरातें आज भी महफूज हैं। वैसे ही ये नहीं हुआ कि जमाने के साथ जो है ना वो जिस क़िरात में कोई एक क़िरात है, उस क़िरात के अंदर जो है वो अल्फाज चेंज हो गए। नहीं, जैसे नाजिल हुआ था उस क़िरात के अंदर वैसे ही आज मौजूद, ठीक है ना। तो कुरान की हिफाजत की बात जो हम करते हैं ना, तो हम में से अक्सर को ये बात नहीं पता होती है कि सारी दुनिया के अंदर जो है वो एक ही कुरान मजीद नजर आता है और एक ही जो है वो अल्फाज नजर आते हैं। तो भाई वो एक किरात है, उस एक किरात के अंदर जैसे नाजुल हुआ था वैसे ही आज भी मौजूद है, लेकिन दूसरी किरातें जो है वो उनके अंदर मुख्तलिफ अल्फाज, मुख्तलिफ लहजे वगैरह हैं, पढ़ने के लहजे भी डिफरेंट हैं, कुछ अल्फाज के डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन ये वैसे ही है जैसे नाजिल हुए थे 1400 साल पहले, और आज भी वैसे ही है, ठीक है ना। ये इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा सबका, अगर नहीं आया तो उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुजिबू का लफ्ज फरमा रहे हैं कि ये मशहूर किरात के मुताबिक पढ़ा गया है, ठीक है, यानी जो जो राइज उम्मत के अंदर जो उस्मानी तर्ज के ऊपर जो पढ़ा जाता है, जिस पे के हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर मसहफ तैयार करवा करके फिर जो है वो पूरी उम्मत के अंदर बांट दिए, ताकि अवामुन नास वो एक ही क़िरात के ऊपर कुरान मजीद पढ़े, ठीक है ना। गैर अरब अवाम वो एक ही क़िरात के ऊपर पढ़े, क्योंकि भाई क़िरातों का डिफरेंस जो था वो तो अरबों के मुख्तलिफ कबाइल और इलाकों की वजह से था ना। गैर अरबों के अंदर कोई थोड़ी अरबी के मुख्तलिफ लहजे होते थे, गैर अरब तो अरबी बोलते ही नहीं थे, अरबी जानते ही नहीं थे, ठीक है। तो जब गैर अरबों के अंदर कुरान मजीद को नशर किया गया, उसको पब्लिश करके जो है वो आगे भेजा गया, तो उनको सिर्फ एक ही किरात के अंदर भेजा गया, सिर्फ एक ही किरात के अंदर, ठीक है। लेकिन अरबों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किरातें थी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो मुख्तलिफ किरातों की बात हो रही है, तो अरबों में जो है वो जो मशहूर किरात थी ना, किरातें थी, उनमें कुजिबू का लफ्ज इस्तेमाल, सही है। और इसकी जो तफसीर हमने इख्तियार की है वो सबसे ज्यादा असलम और बेगुबार है, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा सही और तो सबसे ज्यादा क्लियर। बेगुबार यानी इसके अंदर कोई क्लाउडीनेस नहीं है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। बेगुबार का मतलब होता है कोई गुबार नहीं है, बिल्कुल क्लियर। वो कहते हैं ना मतला अबरालूद है, या मतला जो है ना वो जब फॉग होता है, तो फॉग होता है तो आपको बात नजर नहीं, आपको चीजें नजर नहीं आ रही होती। मिस्ट होती है तो चीजें नजर नहीं आ रही होती, ठीक है। तो बेगुबार का मतलब कि कोई मिस्ट नहीं है, कोई फॉग नहीं है, कोई डस्ट स्टॉर्म नहीं आया हुआ, ठीक है, कोई आंधी नहीं आई हुई जिसके अंदर आपको नजर नहीं आ रही हो चीजें, बल्कि बिल्कुल बेगुबार है, ये क्लियर है। तो वो सबसे ज्यादा असलम और बेगुबार है कि लफ्ज कुजीबू का हासिल अपने तखमीने और ख्याल का गलत होना है, ठीक है, कि इसका कंक्लू इसका हासिल क्या है, यानी इससे क्या जो है वो कंक्लूजन निकलता है कि अपना जो तखमीना था ना इनका, अब इनकी जो जजमेंट थी, इनकी जो एस्टिमेशन थी रसूलों की, ठीक है, वो गलत साबित हुई, ठीक है। और ख्याल का गलत होना एक ही बात है कि अपना जो एस्टिमेशन थी, अपनी जो जजमेंट थी, उसका गलत होना, इसका मतलब कुजीबू का मतलब, ठीक है, वो झूठे हो गए। यानी जैसे तर्जुमे में बताया था कि कजवा कजवा का मतलब होता है उसने झूठ बोला, और कुजीबू का मतलब क्या, को कि उससे झूठ बोला गया, और ये कुजीबू जमा का सीगा, ठीक है, जमा का सीगा है, तो उनसे झूठ बोला गया। तो भाई उनसे किसने झूठ बोला? किसी ने आकर के उनको कोई थोड़ी बात बोली थी कि ऐसा नहीं ऐसे होगा, नहीं, बल्कि उनकी अकलों ने उनको धोखा दिया, उनकी एस्टिमेशन ने उनको जो है ना वो गलत जजमेंट बताई। इंसान एस्टिमेशन कैसे करता है? अपनी अकल को इस्तेमाल करके कैलकुलेट किसी चीज के बारे में जजमेंट क्रिएट करता है, ठीक है ना, कोई एस्टिमेशन बनाता है, अकल को इस्तेमाल करते हैं ना। अब अकल जो है वो इंसान को कोई गलत एस्टिमेशन दे दे तो इसको भी कुजीबू कहा जाएगा, ठीक है ना। ही वॉज लाइड टू, सही है, और दे वर लाइड टू, ठीक है। तो किसी इंसान ने नहीं उनको गलत बोला था, ना खुदा ने उनको गलत बोला था, ना किसी फरिश्ते ने उनको गलत बोला, बल्कि उनकी अपनी अकलों ने, यानी उनकी अपनी समझ ने, ठीक है ना। तो उसकी फिर उसकी क्या एक्सप्लेनेशन हजरत बाद में दे रहे हैं कि ये एक इज्तिहादी, एक किस्म की इज्तिहादी गलती है, ठीक है। इज्तिहाद जोहद से निकला, इज्तहदा यज्तहिदु इज्तिहादन, और इसके जो रूट लेटर्स हैं वो जहदा है, जहदा, और जहदा का लफ्ज इसी से जिहाद का लफ्ज निकला। जिहाद का मतलब क्या होता है, एफर्ट करना, मेहनत करना, जद्दोजहद, उर्दू में हम इसके लिए जद्दोजहद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इज्तिहाद का मतलब क्या होता है कि एफर्ट लगा करके, इंटेलेक्चुअल जहनी एफर्ट लगा करके किसी नतीजे पे पहुंचना जिसके अंदर के आपकी नीयत खालिस अल्लाह की रजा और आखिरत की जजा, कोई नफसानी शहवानी ख्वाहिश ना हो उसके अंदर। तो और एफर्ट लगाने का मतलब क्या होता है, यानी इंटेलेक्चुअली एफर्ट लगाने का मतलब क्या होता है कि जो है वो दांत पीस रहे हैं और जहन के जो है ना वो टेंशन ले रहे हैं, और क्या मतलब एफर्ट लगा करके आप कोई नतीजा खर्च कर रहे हैं, तो टेंशन लेकर के नतीजा खर्च कर रहे हैं नहीं, बल्कि इल्म हासिल करके, सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके, जो असल मवाद है, असल जो कंटेंट है उसको भी समझ करके, और जो कराइन है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, राइट, जो आसपास के हालात हैं उनको भी अच्छी तरीके से समझ करके, ये है इंटेलेक्चुअल एफर्ट लगाना, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एफर्ट लगाना, इसको इज्तिहाद कहते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारी और भी बातें इज्तिहाद के बारे में माजी में हम कर चुके हैं कि घर की औरत जो होती है, घर के अंदर जो माँ होती है, वो भी, उसको भी जरूरी है कि वो इज्तिहाद करे, इज्तिहाद करे अपने घर के मामलात के अंदर, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के अंदर वो भी इज्तिहाद करे, यानी इखलास के साथ, अल्लाह की रजा और आखरत की जजा के साथ, और अपने घर के हालात को पेश नजर रख करके, गौर व फिक्र के साथ जो है वो नतीजे अखज करे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे घर का जो 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 निजाम है वो कैसे चलाना चाहिए, मुझे अपने फैसले कैसे करने चाहिए, कौन से वाले फैसले करने चाहिए, बच्चों की तरबियत के बारे में, बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के बारे में, बच्चों की नफसियाती तरबियत के बारे में, बच्चों की रूहानी तरबियत के बारे में इल्म हासिल करके। तो इस तरीके से घर की औरत को भी इज्तिहाद करना चाहिए। जब किसी कौम के अफराद इज्तिहाद करना शुरू कर देते हैं ना, तब वो कौम कामयाब, यही नहीं कहना चाहता, वो तरक्की करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की कर जाती है, और दुनियावी एतबार से जो है वो एटम बम बना लेती है और मिसाइल बना लेती है, नहीं, बल्कि वो कौम कौम कामयाब हो जाती है जब उसके अफराद इज्तिहाद करना शुरू करते, और जब उस कौम के अफराद इज्तिहाद नहीं करते बल्कि क्या करते हैं जी, क्या करते हैं, तो वो नाकाम हो जाती है। जब इज्तिहाद नहीं करते बल्कि क्या करते हैं कि वो कौम नाकाम हो जाती है जी, उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, फसाद करते हैं फैसेट नहीं, क्या करते हैं जब वो कौम नाकाम नाकाम हो जाती है, फॉलो, तो फॉलो करना तो अच्छी बात है भाई, आंधी तकलीद नहीं करते जी, अंधी तकलीद करते हैं, अंधी तकलीद, ठीक है ना। जब जो है ना वो बस यानी फायदा नुकसान देखा नहीं, ये नहीं देखा कि किसकी तकलीद करनी चाहिए, बल्कि बस यानी ऐसे ही बस जिस तरफ के, गो विद द फ्लो जिसको कहते हैं, जस्ट गो विद द फ्लो, है ना, बस जिस तरफ लोग चले चले जा रहे हैं
दरिया भी चलना शुरू हो जाए। ये नहीं देख रहे कि भाई जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं या जो है वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, नुकसान की तरफ जा रहे हैं, नहीं बस जा रहे हैं ना, बस मैं भी उनके साथ चलना शुरू हो जाऊं, ठीक है ना। इसको शीप मेंटालिटी भी कहते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है ना, जिस तरह भेड़ें जो हैं वो बस आगे वाली भेड़ को देखते हैं किधर जा रही है। तो वो बड़ा मशहूर जो है वो उसके लिए एक हिकायत भी मशहूर है कि भेड़ें जो है ना वो कहीं जा रही थी तो किसी ने जो है वो उनके सामने एक लकड़ी रख दी, ऊंची सी ना एक थोड़ी सी लकड़ी रख दी, तो जो भेड़ चल रही थी सबसे आगे ना, तो उसने जो है वो उस लकड़ी के ऊपर से छलांग मारी, वो छलांग मार के आगे चले गई, ठीक है। इस तरह से चंद भेड़ों ने उस लकड़ी के ऊपर से छलांग मार करके जब आगे चली गई ना, अब इसने जो है ना वो उस लकड़ी को हटा दिया। अब जो है ना पीछे जो भेड़ आनी थी, सामने लकड़ी नहीं है, लेकिन हर भेड़ फिर भी छलांग मार रही है, भाई लकड़ी अब नहीं है, अब क्यों छलांग मार रही हो? बिकॉज द वन इन फ्रंट ऑफ मी जंप्ड, मेरे सामने वाले ने जंप किया था, इस वजह से मैं भी जंप कर रही हूं। भाई क्यों जंप कर रही हो अब तुम? अब तो जरूरत नहीं है जंप करने की। तो ये जो भेड़ चाल, इसको भेड़ चाल कहते हैं, ठीक है ना। तो जो कौम भेड़ चाल चलना शुरू हो जाती है ना, ये नहीं देखती कि वो किसको फॉलो कर रही है और क्यों फॉलो कर रही है, तो वो कौम बर्बाद हो जाती है। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे अगला जुमला क्या होता है इस फकीर का फिर इसके बाद, ठीक है ना। हम क्यों बर्बाद हैं दुनिया और आखिरत दोनों के हिसाब से, हम भेड़ चाल में, ठीक है ना। तो फॉलो तो करना है भाई, फॉलो किए बगैर इंसानियत आगे नहीं चल सकती। अल्लाह ताला का हुक्म है फॉलो करो, फत्तबे सबीला मन अनाबा इलैया, मन की शर्त भी लगाई है, हर एक को फॉलो मत करो, बल्कि मन अनाबा इलैया जो मेरी तरफ रुजू करने वाले हैं उनको फॉलो, ठीक है ना। अब हम जो है वो जो गोरे को फॉलो करता है हम उसको भी फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, जो जो है ना वो अपना कोई नई राग अलापना शुरू कर देता है हम उसको भी फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, राइट। अजीब गरीब किस्म की चीजों को हम फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी कौम जो है वो बर्बाद हो जाती है क्योंकि वो अंधी तकलीद कर रही होती है, ठीक है। तो इज्तिहाद हर इंसान को करना है, ठीक है। अब बच्चे सवाल करेंगे तो ऐसे ही सवाल करेंगे ना हम जो है वो घर की औरत, अच्छा बस सवाल उन्होंने किया है कि इज्तिहाद दीनी मसाइल में करना है कि या दुनियावी मसाइल में करना है, ठीक है। इज्तिहाद दीनी मसाइल में करना है या दुनियावी मसाइल में करना है, तो जवाब इसका क्या होगा कि इज्तिहाद सारे मसाइल में करना है, ठीक है ना। इज्तिहाद सारे मसाइल में करना है, ठीक है ना। सवाल इसके के जिस मसले में आपको कोई ऐसा शख्स मिल गया कि जिसने ज्यादा अच्छा इज्तिहाद किया हुआ है, तो उसमें तो आप उसको फॉलो करें, ठीक है। वरना अगर कोई ऐसा नहीं है आपके सामने काबिले तकलीद शख्स, दुनियावी मुआमलात हो या दीनी मुआमलात, सारे मुआमलात उनमें इज्तिहाद करना है, सारे मुआमलात में इज्तिहाद करना है, ठीक है। सिवाय उन मुआमलात के जिनके लिए आपके सामने कोई ऐसी रोशन शख्सियत मौजूद है कि जिसने आपसे पहले इज्तिहाद किया हुआ है, ठीक है ना, और वो नेकी के ऊपर है, तकवा के ऊपर है, और जो है वो इखलाकी बरतरी के ऊपर है, उसमें तो आपने उसको फॉलो करना है। इसको कहते हैं तकलीद करना, ये अंधी तकलीद नहीं है, ये तकलीद है। लेकिन अब घर के अंदर जो जरूरी तो नहीं कि घर के सारे मामलात के अंदर आप हर जो घर की औरत है, हम घर की औरत की मिसाल दे रहे थे ना, तो घर की औरत के सामने जो है वो हर वक्त कोई ना कोई तकलीद करने वाला मौजूद हो जिसकी वो तकलीद कर सके, नहीं, उसने तो अपने घर का निजाम खुद चलाना है ना, खुद फैसले करने हैं ना। वो पड़ोसन वाली औरत की तो तकलीद नहीं कर सकती, भाई पड़ोसी वाली जो औरत है उसका अपना अलग घर है, उसके अपने अलग बच्चे हैं, उसके अपने मसाइल हैं, उसके अपने जो है वो प्रायोरिटीज हैं, ठीक है। तो आप जो है वो उसको फॉलो करना शुरू कर देंगी तो आपके घर की तो अलग जरूरियात हैं, अलग आपके घर का माहौल है, अलग आपके घर की जरूरियात हैं, राइट, तकाजे हैं, मजबूरियां हैं, रिसोर्सेज हैं, अलग अलग हैं। तो अब आप अगर पड़ोसी वाली औरत की तकलीद शुरू कर देंगी तो आपने तो फिर अपने घर का काम खराब कर देना है ना। इस वजह से घर के मामलात के अंदर, और ये दुनियावी मामलात की भी बात करो, सिर्फ दीनी मामलात नहीं, दुनियावी मामलात के अंदर भी घर की औरत को खुद इज्तिहाद करना, ठीक है। तो सारे मसाइल के अंदर बंदा इज्तिहाद करे, यानी आंखें ये एकदम हम देखें, इज्तिहाद के जो ऑपोजिट है ना वो अंधी तकलीद भी है, ठीक है, कि दूसरों की तकलीद करना, और एक दूसरा भी एक एक
एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो होता है अंधी तकलीद करना, बस दूसरों को फॉलो करना, और एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यानी इज्तिहाद की नेगेशन में दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कि क्या हो सकती है, बस कोई सोच समझ कुछ नहीं, बस ऐसे ही जो है ना वो, नहीं नफ्स, हाँ नफ्स परस्ती भी कह सकते हैं, लेकिन एकदम ही जैसे क्या कहते हैं, ऐसी बस बगैर फिक्र के, यानी होता ना, यानी बहुत ही हाफ हार्टेडली रैंडम थॉट्स भी कोई नहीं, यानी जिसमें आपका कोई जहन दाखिल ही नहीं आपके काम के अंदर, ऐसे ही बस जो है ना वो हाफ हार्टेडली और जो है वो बेदिली के साथ काम करना, लापरवाही के साथ काम करना, बगैर सोचे समझे काम करना, राइट, सुस्ती करना है, भाई क्या यार मैं इज्तिहाद करूं, कहां मैं फॉलो करता रहूंगा, कहां मैं तलाश करूं किसको मुझे फॉलो करना चाहिए, राइट, तो ना किसी को फॉलो कर रहे हैं ना खुद इज्तिहाद कर रहे हैं, बस जो है ना वो लापरवाही के साथ जो है वो वक्त गुजर रहा है, बस टाइम गुजर रहा है बस लापरवाही के साथ, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बर्बादी का ये भी रास्ता है, सिर्फ जो है ना ये नहीं कि गोरे को आप फॉलो करेंगे तभी बर्बाद होंगे, नहीं, अगर आप जो है वो इस तरीके से भी जो है ना, और ये फिर वो कहेंगे, इसको कहेंगे शैतान को फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपको गफलत में डाल रहा है, जो कि आपको लापरवाही में मुबतला कर रहा है, राइट, जैसे मिसाल के तौर पर हम फोन के ऊपर, राइट, सारा दिन जो है ना वो आप फोन के ऊपर जो है वो लगे रहे, बस कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर, आप किसी को फॉलो तो नहीं कर रहे ना उसके अंदर, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, और जब कोई काम करने का वक्त आएगा उस वक्त बस जल्दी जल्दी कुछ उल्टा सीधा कर लिया बस किसी तरीके से, ठीक है ना, तो इसमें आप किसी को फॉलो भी नहीं कर रहे, इसमें आप इश्तेहाद भी नहीं कर रहे, बस ऐसे ही जिंदगी गुजर रही है, ठीक, तो ये बर्बादी का तरीका, ठीक है, तो ये कौम जो बर्बाद होती है ना कौमें, तो वो इन वजह से बर्बाद होती हैं, तो हमें मुज्तहिद बनना है, हमें मुज्तहिद बनना है, ओ भाई नमाज पढ़ने में सुन्नत तरीका क्या है, इसके ऊपर इज्तिहाद हो चुका, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने इज्तिहाद कर लिया, इमाम शाफी ने इज्तिहाद कर लिया, अब हमें दोबारा इज्तिहाद करने की जरूरत नहीं है कि नमाज कैसे पढ़नी है, हाथ कैसे बांधना है, रुकू कैसे करना है, इसमें हो चुका इज्तिहाद, और कैसे लोगों ने किया जो कि काबिले तकलीद लोग थे, इनमें इज्तिहाद हो चुका, लेकिन घर में बच्चे की तरबियत में आपने एग्जैक्टली क्या क्या कदम उठाना है, इसमें तो इज्तिहाद नहीं किया हुआ ना किसी ने, ये तो आपको खुद इज्तिहाद करना है ना, और उसी तरीके से आपको अपने दूसरे मामलात को, खानदान के मामलात को कैसे चलाना है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने इज्तिहाद कर दिया क्या आपके खानदान के मामलात के बारे में, नहीं, उन्होंने तो इज्तिहाद नहीं किया, आज के दौर के किसी बहुत बड़े शेख ने आपके खानदान के मामलात में इज्तिहाद करके दे दिया आपको, यहां भी मैंने इज्तिहाद कर दिया, ये आप करें जा करके अपने खानदान के मामलात, नहीं, उन्होंने तो इज्तिहाद नहीं किया आपके खानदान के मामलात में, राइट, तो उनमें तो भाई हमने खुद इज्तिहाद करना है ना, राइट, नियत अल्लाह की रजा आखरत की जजा, नंबर 1 एसेंशियल फॉर इज्तिहाद, प्रीरिक्विजिट फॉर इज्तिहाद नियत का खालिस होना, नंबर 2 इल्म हासिल करना, उस मामले के बारे में इल्म हासिल करना, आंखें खोल करके, कानों को खोल करके, गौर व फिक्र करके, गौर व फिक्र करके, और फिर उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचना, सुबह को इस्तिखारा भी कर लेना चाहिए, सुबह को इस्तिखारा भी कर लेना चाहिए कि ए अल्लाह आज के जितने मामलात मुझे पेश आए मैं उन सब के लिए आपसे इस्तिखारा करता हूं, ठीक है, ताकि अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हो जाए हमारे इश्तिहादों के अंदर, ठीक है ना, सारा दिन जो आप इश्तिहाद करते रहेंगे उसमें इस्तिखारा जो आप सुबह को कर चुके हैं, फजर की नमाज की बात कर लें या इशराक की नमाज की बात कर लें, या अगर इशराक का टाइम जो है वो निकल गया है, चाश्त की नमाज के बाद इस्तिखारा कर लें, सारा दिन इंसान को ऐसे 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 क्रॉस रोड्स पड़ते हैं, ऐसे उसके सामने जो है वो ऑल्टरनेटिव्स आते हैं कि जिसके अंदर उसको इज्तिहाद करना चाहिए, तो अल्लाह की रजा उसके अंदर, अल्लाह की मदद भी शामिल हो गई इस्तिखारा करके, और फिर उसके बाद गौर व फिक्र करके, इल्म हासिल करके, नीयत को दुरुस्त करके फिर इज्तिहाद करें, ठीक है, क्लियर है ना भाई, सबको करना है इज्तिहाद, सब करना है इज्तिहाद, ये जो अंधे तकलीद की तरह
अंधे मुकल्लिदीन की तरह जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, या लापरवाही के अंदर अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं वेस्ट करनी है। हम सब ने मुज्तहिद बनना है, इल्ला ये कि किसी मामले में हमारे सामने कोई हमसे बेहतर मुज्तहिद मौजूद है, फिर तो हमने उस मुज्तहिद को फॉलो करना, वरना हमने खुद इज्तिहाद करना। ठीक है, दोनों चीजें कवर हो गई, अब कोई चीज रह नहीं गई इसके बाद। ठीक है, तो बहरहाल तो हम इज्तिहाद का लफ्ज आया था, तो इस वजह से सारी डिस्कशन हो गई। तो कहते हैं कि जी ये एक इज्तिहादी गलती थी उनकी, उन्होंने इज्तिहाद किया था, राइट, लापरवाही में फैसला नहीं कर लिया था, लापरवाही में कोई तखमीना नहीं लगा लिया था, और ना जो है वो किसी शैतान की या किसी बुरे इंसान की तकलीद कर रहे थे, बल्कि उन्होंने इज्तिहाद किया था। ठीक है, और अंबिया अलैहिस्सलाम से कोई ऐसी इज्तिहादी गलती हो सकती है, पॉसिबल है, हो सकती है। अलबत्ता अंबिया और दूसरे मुज्तहिदीन में ये फर्क है कि अंबिया अलैहिस्सलाम से जब कोई इज्तिहादी गलती हो जाती है तो अल्लाह ताला उनको इस गलती पर कायम नहीं रहने देते, बल्कि उनको बाखबर करके हकीकत खोल देते हैं। दूसरे मुज्तहिदीन का ये मुकाम नहीं है। ठीक है ना, दो क्लासेस पहले इस टॉपिक पे बड़ी तफसील के साथ 1 घंटा तकरीबन हमने बात करी। ठीक है, कि जो दूसरे मुज्तहिदीन होते हैं ना, तो उनकी गलती नहीं खुलती, हत्ता के जो 4 आइम्मा मुज्तहिदीन हैं उनके बारे में तो उम्मत के मशायख का ये राय है कि कयामत के दिन भी उनकी गलती अल्लाह ताला नहीं खोलेंगे। ठीक है, तो दुनिया में तो क्या दुनिया में तो खोलते नहीं, कयामत के दिन भी नहीं खोलेंगे उनकी गलती को। ठीक, क्योंकि गलती खुलती है तो इंसान को जो है कुछ शर्मिंदगी होती है। ठीक है, तो भाई जब गलती खुलेगी नहीं तो फिर गलती तो गलती हो गई। लेकिन मजे की बात क्या है कि जो ऐसे मुज्तहिदीन होते हैं ना, इखलास नियत वाले और इल्म वाले, सही इल्म वाले बल्कि, ठीक है ना, उनकी गलती पर भी उनको सवाब मिलता है, उनकी गलती पर भी उनको सवाब मिलता है, क्योंकि उन्होंने इज्तिहाद किया। हदीस मुबारक इसके ऊपर दलील है। ठीक है, मुज्तहिद अगर सही इज्तिहाद करता है तो उसको 2 सवाब मिलते, और अगर गलत इज्तिहाद करता है तो उसको 1 सवाब मिलता। ठीक है ना, ये तो हो गई मुज्तहिद की अपनी बात, और दूसरी बात क्या बताई थी, याद है किसी को? ये तो मुज्तहिद के अपने बारे में कि उसको 2 सवाब मिलेंगे या उसको 1 सवाब मिलेगा, और दूसरी मजे की बात क्या थी जो इससे भी ज्यादा मजे की है, यानी गलती करने के ऊपर सवाब मिल रहा है, इससे भी ज्यादा मजे की बात क्या बताई थी, किसी को याद हो? तो 2 या 3 क्लासेस पहले जो बात हुई थी इसमें। जी जल्दी से बता दें, टाइम तो ज्यादा नहीं होता। एग्जैक्टली नहीं, फॉलोअर्स विल नॉट बी पेनलाइज, नहीं फॉलोअर्स विल नॉट बी पेनलाइज, नहीं, ये मजे की बात भी थोड़ी हुई। मजे की बात तो ये हुई कि फॉलोअर्स विल गेट रिवॉर्डेड, जो मुश्तहिदीन के फॉलोअर्स होते हैं उनको सवाब मिल रहा होता है फॉलो करने में। किस बात को फॉलो कर रहे हैं? गलती को फॉलो कर रहे हैं, गलती को फॉलो कर रहे हैं, मुज्तहिद साहब की, अपने मुज्तहिद साहब की गलती को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि अजाब नहीं मिलेगा, वो तो नेगेटिव की आपने बात कर दी, नेगेटिव नहीं हो, नहीं भाई पॉजिटिव होगा, उनको सवाब मिलेगा, दे विल बी रिवॉर्डेड। ठीक है, तो अब जो है ना वो हाथ नीचे बांधना है, ऊपर बांधना है, नाफ पे बांधना है कि कल्ब के ऊपर बांधना है? सुन्नत तो एक ही है, एक ही सुन्नत है, या तो इमाम वो हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात सही है, या इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बात सही है, या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बात सही है। तो भाई एक ही की बात सही है ना, बाकी 3 तो गलत है। लेकिन बाकी 3 को जितने मुसलमान फॉलो करते हैं सबको सवाब मिलेगा, सबको सवाब मिलेगा। ठीक है, ये है मामला इज्तिहाद का। इज्तिहाद की अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां कितनी कदर है कि मुज्तहिद को तो सवाब मिलता ही मिलता है, उसके फॉलोअर्स को भी सवाब मिलता है। ठीक है, विल वी ऑल्सो फॉलो अंडर दिस हदीस इफ वी डू इज्तिहाद फॉर नॉर्मल थिंग्स? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। ठीक है ना, अगर हम जैसे औरत है घर की, वो खाना पकाने के बारे में कि आज मुझे कौन सी डिश पकानी है, अगर वो उसमें उसके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये भी बना सकती हूँ, ये भी बना सकती हूँ, ये भी बना सकती हूँ, ये भी बना सकती हूँ। अब अगर वो इज्तिहाद करके किसी नतीजे पे पहुंचेगी, उसको खाना पकाने के ऊपर सवाब मिलेगा क्योंकि उसने इज्तिहाद किया इसके। ठीक है भाई, हम तो कौम की कामयाबी की बात कर रहे हैं, सवाब के बगैर ही कामयाबी हो जाएगी? कामयाबी हो गई और सवाब ना मिला? जी नहीं, ईमान वाले का हर अमल सवाब का, अगर वो इज्तिहाद करता है, अगर वो इज्तिहाद करता है। ठीक है, क्योंकि कौम कामयाब हो रही है, ऐसे फ्री में नहीं कामयाब हो जाती कौम। अल्लाह ताला फ्री ये नहीं कि हाँ भाई ठीक है दुनिया में कामयाब कर दूंगा, आखिरत में तुम्हें ठेंगा मिलेगा। जी नहीं, अल्लाह ताला दुनिया में भी देंगे, अल्लाह ताला आखिरत में भी देंगे, और सवाब आखिरत की करेंसी को कहते हैं। ठीक है, तो हम मुज्तहिद बन जाए, लेकिन उन चीजों में इज्तिहाद ना करना शुरू कर दिएगा जिनमें के इज्तिहाद हो चुका है ना। ये शैतान जो है ना, ये हर चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, हर चीज को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। अगर हमारे ये जो तो पॉइंट है ना, कौम की कामयाबी वाला पॉइंट अगर हमारे समझ में आ गया ना, अब वो क्या करेगा? अब वो कहेगा कि बस किसी मुज्तहिद को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस तुम हर चीज में तुम ही इज्तिहाद करो, किसी दूसरे को फॉलो ना करो। राइट, वो इस रास्ते से भी हमें गुमराह करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो शैतान है, वो हमारा दुश्मन है, और वो हार नहीं मानता, वो नहीं हार मानता। ठीक है, तो उससे फिर ऑलवेज बी वेयर, ऑलवेज बी वेयर। मुज्तहिद का एक जरूरी काम ये भी है, एक तो जो कंडीशंस होगी ना इज्तिहाद की, नीयत खालिस अल्लाह की रजा और आखिरत की जदा, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सफिशेंट इल्म उस मामले का कि जिस मामले में आप इज्तिहाद करने जा रहे हैं। ठीक है, और तीसरी चीज ये कि शैतान से हर वक्त वो अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं, हर वक्त शैतान की तरफ जो है ना वो यानी अपने आप को समझते हैं कि जी मुझे अपने आप को शैतान से भी बचाना है। ठीक है, अभी इतनी लंबी कहानी मुझे नहीं पढ़ सकूंगा आपकी। ठीक है, इन्होंने कुछ लिख दिया डायरेक्ट मैसेज के अंदर बंदरों के बारे में बाद में देखना होगा। अच्छा, तो कहते हैं कि जी अम्बिया अलैहिस्सलाम से जब कोई इज्तिहादी गलती हो जाती है, तो अल्लाह ताला उनको इस गलती पर कायम नहीं रहने देते, बल्कि उनको बाखबर करके हकीकत खोल देते हैं। दूसरे मुज्तहिदीन का ये मकाम नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया सुलह हुदैबिया इस मजमून के लिए काफी शाहिद है। ठीक है, यानी और भी दीगर मुकामात पे ऐसा मामला हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम से इज्तिहादी गलती हुई है, लेकिन सुलह हुदैबिया का मामला काफी है जो हजरत यहाँ पे बयान कर दिया, क्योंकि कुरान करीम में मजकूर है कि इस वाकये की बुनियाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख्वाब है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, और अम्बिया अलैहिस्सलाम का ख्वाब भी बहुक्म वही होता है। ठीक है, तो वो भी अल्लाह की तरफ से होता है, वो झूठा ख्वाब नहीं होता अम्बिया का, इसलिए इस वाकये का होना यकीनी हो गया, मगर ख्वाब में इसका कोई खास वक्त और मुद्दत नहीं बतलाई गई थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंदाजे से ख्याल फरमाया कि इसी साल ऐसा होगा, इसलिए सहाबा कराम में ऐलान करके उनकी खासी तादाद को साथ लेकर उमरे के लिए मक्का मुअज्जमा को रवाना हो गए, मगर कुरैश मक्का ने मुजाहिमत की और उस वक्त तवाफ व उमरे की नौबत न आई, बल्कि इसका मुकम्मल जुहूर 2 साल बाद 8 हिजरी में फतेह मक्का की सूरत से हुआ। और इस वाकये से मालूम हो गया कि जो ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था वो हक और यकीनी था। ठीक है, वैसे तो कजा उमरा भी अगले साल ही हो गया था, ठीक 1 साल के बाद कजा उमरा हो गया था, तो लेकिन हजरत ने यहाँ पे मुकम्मल जहूर की बात करी। ठीक है ना, यानी मक्का मुकरमा में फतह के साथ दाखिल होना, तो वो मुकम्मल जहूर जो है वो तो 2 साल के बाद हुआ, 8 हिजरी में। ठीक है, मगर इसका वक्त जो कराइन या अंदाजे से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमा लिया था, उसमें गलती हुई, मगर इस गलती का इजाला उसी वक्त हो। ठीक है, लेकिन दूसरों के साथ ऐसा मामला नहीं, क्योंकि नबुवत का जो दर्जा है ना वो किसी और को हासिल नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने दूसरों के साथ ऐसा किया कि हाँ किसी को मुतला हो भी जाता है, किसी को किसी तरीके से पता चला हाँ भी उन्होंने इज्तिहादी गलती करी थी, उनकी अपनी जिंदगी में भी पता चल सकता है। राइट, उनकी जिंदगी के बाद लोगों को पता चल सकता है कि हाँ भाई वो फलाने बड़े साहब थे, बहुत बड़े थे, लेकिन उनसे ये इज्तिहादी गलती हो गई थी। और ऐसा भी हो सकता है कभी भी पता ना चले कयामत के दिन पता चले, और ऐसा भी हो सकता है कि कयामत के दिन भी पता ना चले, जैसा कि आइमा अरबा के बारे में बशायर फरमाते हैं, वो वैसे एक तखमीना लगाते हैं कि हो सकता है कयामत के दिन रहता ना बताएं, कोई 100% तो नहीं पता कयामत के दिन बताएंगे कि नहीं बताएंगे, उनका ख्याल है गुमान है अल्लाह ताला की जात से कि नहीं बताएंगे। तो चारों पॉसिबिलिटीज हैं दूसरों के लिए, जिंदगी में पता चल सकता है, जिंदगी के बाद पता चल सकता है, आखिरत में पता चल सकता है, या कभी पता नहीं चल सकता, ठीक है ना। गैर नबी के लिए चारों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन नबी के लिए उन्हीं की जिंदगी में फौरन या चंद सालों के बाद अल्लाह ताला बात खोल देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा था, बल्कि फौरन ही खोल देते हैं, ये नहीं नबी, सॉरी नहीं बात गलत है, इसके चंद सालों के बाद नहीं, बल्कि नबी की जो है ना वो तो फौरन ही, ठीक है, क्योंकि नबी की तो उम्मत ने हर हाल में तकलीद करनी है ना। अब कोई नबी ने जो है वो गलत इश्तेहाद कर लिया तो उम्मत जो है वो गलत तकलीद के ऊपर फिर चल पड़ेगी, अल्लाह ताला ने ये सिलसिला रखा ही नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला फौरन जो है वो उसकी इस्लाह फरमा देते हैं कुरान की वही के जरिए से, जैसे सूरह अबस व तवल्ला, ये भी उसी की एक मिसाल है, और जो है वो नबी अलैहिस्सलाम का ये इज्तिहाद कि मैं शहद नहीं खाऊं, वो एक अहलिया मोहतरमा ने कह दिया था कि वो आपके मुंह से जो है ना वो स्मेल आती है शहद खाने, वो वजह थी उसकी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फैसला कर लिया कि नहीं मैं शहद नहीं खाऊंगा, ये एक था नबी, अल्लाह ताला ने फौरन उतना पे फरमा दिया, ये नहीं आप कैसे हमारी हलाल की भी चीज को आप हराम कैसे कर सकते हैं, क्या है वो कि अपने जोजा की जो है ना वो खुशी की खातिर आपने हमारी हलाल की भी चीज को जो है वो हराम कर दिया, ठीक है। तो कैसे कुरान मजीद में देखें नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के ऐसे ऐसे वाकयात अल्लाह ताला ने हमारे सामने खोले, ठीक है। तो अब जो है ना इसके अंदर हमने जो एक दो क्लासेस पहले बात करी थी वो क्या थी कि हमें क्या करना है इसके अंदर, किसी को याद कि हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, तो उसके बारे में हमने क्या क्या आपके सामने एक मिसाल से बात रखी थी। जब तक मैं इनका ये मंकीज वाला जो है ना वो मैसेज पढ़ता हूँ आप उसके जवाब में इतनी देर में, एन एक्सपेरिमेंट मंकीज बनाना प्लेस आउट ऑफ रीच विद शावर अबव, व्हेन अ मंकी ट्राई टू ग्रैब ए बनाना The shower would turn on. Every time new monkeys were introduced, the older monkeys would prevent the new ones from reaching the bananas. One after another, they replaced all new monkeys, but they all were not taking bananas. अच्छा, तो वो शावर वॉज टर्न ऑन, पता नहीं मुझे खुद अभी आई एम ब्लैंकिंग आउट, मुझे आपका ये समझ भी नहीं है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं जी। हुदहुद वाली मिसाल, ठीक है, कि भाई हम ये एज्यूम ना करें कि जी हमारे बड़े साहब हैं, हमारे शेख हैं, हमारे पीर हैं, हमारे उस्ताद हैं, और बड़ा इनके पास दीन का इल्म है तो इनको अब सब कुछ पता होगा, आलिमुल गैब होंगे, राइट, सब कुछ उनको पहले से पता होगा, बल्कि हम जो है वो हुदहुद का रोल प्ले करें, ठीक है। तो अगर हमें कोई चीज पता चली है जो कि उनको नहीं पता है तो हम उनको जाकर के बता दें, ठीक है। लेकिन फिर उसके अंदर ये बात भी आपको समझाई थी कि हम अपने आप को हुदहुद से ज्यादा मत समझना शुरू होता, ठीक है ना, हम अपने बारे में गलत फहमी में इसका शिकार ना हो जाए, ठीक है ना, कि हम जो है ना वो उनसे कोई ज्यादा बढ़ गए, हमें ज्यादा इल्म हासिल हो गया, हमारी इज्जत बढ़ गई क्योंकि हमने उनको बता दिया कि जी क्या सही है क्या गलत है, बल्कि नहीं, उनका मुकाम और मर्तबा हमारे सामने फिर भी कायम रहना चाहिए, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम ही रहे, अगरचे कि उनको मलका सबा के बारे में नहीं पता था और एक हुदहुद ने आकर के उनको बताया, लेकिन उससे उनका मकाम और मर्तबा घट नहीं गया और हुदहुद का मकाम और मर्तबा बढ़ नहीं गया, बिल्कुल यही चीज जो है ना वो हमारे भी पेश नजर रहना चाहिए, लेकिन उनको आलिमुल गैब समझ करके जी अपना काम भी नहीं करना, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई हुदहुद वाली बात, लेकिन इसके अंदर चंद और भी हमें बातें पेश नजर रखनी चाहिए, वो ये कि ये जो किसी बड़े को किसी गलती या किसी कोई ऐसी चीज जो कि उनको नहीं पता थी उसका इल्म देना ना, इसमें चंद और भी बातें हैं कि आपके पास वो इल्म जो है ना वो अगर कतई तौर पर है, आपको वाकई उस चीज का पता है, तब तो आप उनको बता सकते हैं, अगर आपको सिर्फ एक गुमान है, एक आपको शायबा हुआ है किसी चीज का कि जी जो उनको नहीं पता होगा और आपको पता चल गई है, तो उस वक्त ना उनके सामने जा करके ऐसे मत कहें कि जी मुझे पता चल गया है, आपको ये बात नहीं पता थी, मुझे पता चल गया, मैं आपको बताने आया हूं। नहीं, बल्कि इस तरीके से उनसे बात करें कि जिसके अंदर अदब, मुकम्मल अदब हो, तरीका हो, सलीका हो कि भाई मैंने ये बात सुनी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि ये ऐसा क्यों है, राइट? तो मैं आपके बस सामने इसलिए रख रहा हूं कि बस आप, मेरी कोई गलती होगी ना, आप उसकी इसलाह फरमा दें, राइट? मेरी सोच की गलती होगी, मेरी समझ की गलती होगी, आप उसकी इसलाह फरमा दीजिएगा। मैं सिर्फ आपके सामने अपने जो एक इश्काल है, इसको इश्काल का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे एक इश्काल पेश आया है, मुझे मेरे सामने फलानी चीज आई है जो कि जो है ना वो मुझे जरा परेशान कर रही है, तो मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे ज्यादा इल्म वाले हैं, आपकी बसीरत ज्यादा है, आपके जो है वो समझ ज्यादा है, आपका तजुर्बा ज्यादा है, आप मेरी गलती की इस्लाह फरमा दीजिए, ठीक है ना? जैसे हमारे हजरत अपने बयानात के अंदर अक्सर ये बात बताते हैं कि मेरे हजरत ने एक ऐसी बात करी, मुझे अजीब लगी कि हजरत जो है वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, तो मैं हजरत के पास गया, मैंने कहा हजरत मैं छोटा हूं, मुझे बात समझ में नहीं आती है, तो आप जरा मुझे समझा दीजिए कि आपने जो बात करी इसका मतलब क्या है, राइट? जैसे मिसाल के तौर पर हजरत के जो हजरत थे, ठीक है, हजरत शेखुल हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया कि ला ईमाना लिमन ला बैत लहु, कि जिसका घर नहीं उसका ईमान नहीं, हालांकि हदीसे मुबारक के अल्फाज हैं ला ईमाना लिमन ला अहद लहु, आप फरमाया कि जो अहद का पाबंद नहीं है उसका ईमान नहीं। तो हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह ऐसे अल्फाज बदल करके कहा करते थे, ला ईमाना लिमन ला बैत लहु, ठीक है? तो हजरत उनके पास पहुंच गए कि हजरत मेरी बात समझ में नहीं आई, हदीस तो ये है, तो आप जो है वो ऐसे फरमाते हैं, तो इसमें आपकी क्या हिकमत होती है, किस वजह से आप ऐसे फरमाते हैं? हजरत ने बात समझा दी कि भाई मैं ऐसे इसलिए कहता हूं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि अगर कोई किसी के जाती घर नहीं होता और वो किराए के घर के अंदर रहता है, तो अगर मर्द का इंतकाल हो जाए और बीवी के पास जो है ना वो किराए के पैसे ना हो, तो मालिक मकान जो होता है वो उसको घर से बाहर निकाल देता है, और उस हालत में बीवी जो है ना वो कुफरिया कलमात कहना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से अपना जाती घर बनाना, जाती घर का एहतमाम करना, ये ईमान की हिफाजत के लिए जरूरी है, ईमान की हिफाजत के लिए जरूरी, ठीक है ना? ये कोई लग्जरी और ये कोई ये नफ्स परस्ती और ये ख्वाहिश परस्ती नहीं है, ईमान की हिफाजत के लिए जरूरी, इस वजह से मैं ऐसी बात कहता हूँ। और भी इस तरह के बहुत सारे मामला हजरत बताते हैं हमें कि मैंने अपने हजरत से जाकर देखा, मैं छोटा हूं, मुझे बात समझ में नहीं आती, आप समझा दीजिए, ठीक है ना? उसी तरीके से हमें कोई बात पता चले किसी चीज के बारे में, हम भी अपने बड़ों के सामने इस अंदाज से जाकर के बात करें। अनलेस हमें 100% यकीनी तौर पर वो बात पता चली है, तो फिर हम बतौर खबर के उनको बता सकते, बतौर खबर के बता सकते, वरना हम बतौर इश्काल के उनको उनको बताए, बतौर खबर के ना बताएं, बतौर इश्काल के बताएं कि मुझे एक कंफ्यूजन पेश आ रही है, मैंने ये बात सुनी है, बात समझ में नहीं आ रही, आपके सामने रखा, ठीक है? तो इस बात का लिहाज रखना। और दूसरी बात ये भी कि देखें हुदहुद जो है ना, ये कोई ऐसे ही नहीं कहीं से उठ करके आ गया था और सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसने जो है ना वो बताना शुरू कर दिया था, बल्कि ही वॉज पार्ट ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम्स आर्मी, बल्कि खाली आर्मी का पार्ट नहीं था कि कोई मामूली सोल्जर, वो दरबार का हुदूद था, राइट? उसका सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ एक ताल्लुक था, एक निस्बत थी उसको सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ, तो इस निस्बत और ताल्लुक का होना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जी हम जो है वो आजकल जैसे होता है बड़े बड़े उलमा के ऊपर जो है ना वो मीडिया के ऊपर आकर के तनकीद करनी शुरू कर दी, राइट? उन्होंने ये गलत किया, वो ये ऐसे क्यों करते हैं, उन्होंने ये गलत किया, वो ये गलत करते हैं, और ये जैसे वो है इस तरह के बड़े 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 नमूने आजकल हैं, मैं जो हूँ वो ना, मैं क्या ना, मैं किताब, हाँ क्या क्या कहता है वो प्लम्बर, हमारे एक दोस्त है ना, कहते हैं उसको मैं इंजीनियर नहीं कहता हूँ, मैं उसको प्लम्बर कहता हूँ, राइट? तो बहरहाल इंजीनियर साहब, तो ना मैं बाबी ना मैं वहाबी, ना मैं बाबी ना मैं वहाबी, बल्कि मैं हूँ किताबी, मैं तो किताब पढ़ता हूँ और मैं खुद किताब जो है ना खुद इश्तेहार करता हूँ हर चीज़ का, ठीक है? तो ये इस तरह ये तरीका नहीं है, मैं इल्मी किताबी, ठीक है, ये नहीं, ठीक है? तो तो नस्बत होना, ताल्लुक होना, अदब का होना, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है वो इसके लिए शर्त हैं, तब जो है ना ये काम जो है ना फिर खैर का काम बनेगा, वरना ये फसाद बन जाएगा, वरना ये फसाद बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप जो है वो ऐसा ताल्लुक वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बस ठीक है, आपको कोई बात पता चल गई है, आप अपनी हिफाजत करें, आपके जो घर बार वाले हैं, आपके जो ताल्लुक वाले हैं, उनको बस ज्यादा से ज्यादा उनकी खैरफाई की खातिर उनको कोई बात बताएं, वरना बस रहने दें, ठीक है ना। ये हर एक की इसलाह करने भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो हो गई, और आज की क्लास का वक्त खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह बात है अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ आने की तौफीक अता फरमाए। एक इन्होंने मैसेज लिखा हुआ था, वो भी देख लेते हैं। वी कैन यूज, हमने शायद कुछ गलत समझा है, इंस्टेड ऑफ आपने शायद कुछ गलत समझा है। माशाल्लाह इन साहब ने, जो कि हमारे बच्चों में से एक है, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा कि हमें बड़ों के सामने जाके जब बात करनी चाहिए ना उस चीज के बारे में जो कि यानी खबर नहीं है, बल्कि कोई हमारा एहतमाल है, कोई हमारा जो है वो यानी समझ है, तो उसके बारे में ऐसे कहना चाहिए कि हमने शायद कुछ गलत समझ लिया है, बजाय इसके कि हम उनको जाके ये कहें कि आपने गलत समझा हुआ है, ठीक है। तो ये अल्फाज के बदलने से जो है वो कितना जो है वो बात बदल जाती है, मतलब तरीका बदल जाता है ना अल्फाज के इस्तेमाल से, ठीक है। अल्लाह ताला बात समझ आ गई, तौफीक अता फरमाए। आप और दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।